حکومت چینج، رجیم چینج، اس سے تبدیلی کیا آئی، عوام کو کیا حاصل ہوا؟ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ متوسط طبقہ جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے، وہ پہلے سے پریشان ہے یا وہیں پر ہی ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ رجیم چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جن طاقتوں نے یا جن لوگوں نے اس کو چینج کرایا ہے ان کے لیے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان میں اگر اسٹیبلٹی نہیں آئی، معاشی استحکام نہیں آیا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ڈیفالٹ کی طرف ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا تدابیر کریں گے؟
اس کا تو مقصد ہی کچھ جو جنہوں نے تبدیلی کروائی ہے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن بڑی پاورز نے تبدیلی کرائی ہے وہاں پر، وہ بڑی پاورز جو ہے وہ تو خوش ہیں، ان کو تو چاہیے یہ کہ پاکستان انسٹیبل ہو جائے، پاکستان جو ہے اور زمین کے اندر گھڑتا چلا جائے. اینی وے میں کم بات کروں گا.
میرا ایک سوال ہے یہاں پر بعد میں، آپ نے کہا جن لوگوں نے ریجیم چینج کروائی ہے ان لوگوں نے انڈسٹ کریٹ کروائی ہے، تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کے کہنے پر کر رہے ہیں؟
نہیں 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 نہیں، مگر وہ جو
جیم کی بات کر رہے ہیں نا،
مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اگر آپ کوئی 10 سال کے یا 12 سال کے بچے کو بھی لے رہے ہیں، اس کو بتائیں سرکمسٹانسز کیا ہوئے، ان کو بھی پتا لگے گا کہ اینڈ آف کورس یہ بڑی طاقتوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم کو جو پسند نہیں آیا ہم اس کو چینج کرا دیتے ہیں،
ایسا ہی ہوتا ہے نا.
لطافت صدیقی صاحب مجھے بچائیں.
جی بتائیے. میں ٹھیک ہے، مجھے میں جو سوچتا ہوں، دیکھیے میں ایک ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے حساب سے وہ ریئلسٹک نہ ہو، میرے حساب سے ریئلسٹک نہ ہو. دیکھیے خواہشات اور حقیقت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. انور اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ حقیقتاً کچھ باتیں کی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے شاید خواہشات کی بات کرتے ہیں، لیکن میں حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی اگر فورن پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو پھر پاکستان سے کے بقا کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے سوچئے. اور یہ حقیقت ہے کہ 1.5 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے 3 بیان دیے ہیں. اور یہ بات میری بڑی غور سے سن لیجیے، اب اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، کہ انہوں نے کہا ایک کانفرنس میں اسلام آباد میں کہ دیکھو بھائی، ہمیں پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا ہے، اور ہمارے پاکستان سے ایکسپورٹ ہیں، امپورٹ ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، اور ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات، روایتی تعلقات، پرانے تعلقات کو استوار کرنا ہے. پھر انہوں نے ایک بیان دیا اور وہ یہاں تک چلے گئے، جو پاکستان کی مجبوری ہے، جو حقیقت ہے، کہ اگر ہمارے پاس معاشی مسائل ہیں تو سبھی مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. تو آرمی چیف نے، آئی ایم ناٹ سپورٹر آف آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں، امریکہ سے کہتے ہیں، ایک افسر سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے رسوخ استعمال کریں، اور ہمیں آئی ایم ایف نے جو آخری قسط دینی تھی وہ ہمیں دو، اور یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بیسڈ آن میوچل انٹرسٹ، ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کریں. میری کیا رائے ہے وہ میں نہیں دے رہا ہوں، میں صرف حقائق کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف پاکستان میں ابھی جو لڑائی ہو رہی تھی ادھر، تو وہ یہ ہے کہ جناب ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور ایک حکومت کو گرایا ہے، اور پاکستانیوں سنو کہ ہمیں آزادی لینی ہے امریکہ سے، اور ہم ایک غیور قوم ہیں، اور ہم پاکستان جو ہے خود مختار جو ہے ملک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، فرض کیجئے میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ کیا میں امریکہ کا مخالف بھی ہوں اور میں پاکستان کا بھی کے حق میں بھی ہوں، تو کیا مجھے یہ نہیں سوچنا پڑے گا कि हमारी जो हमारा जो मसला है वो ये है कि हम जितनी भी बहस करें उसमें पाकिस्तान को तो सामने लाओ।
आजकल
जस्ट मैं अभी खत्म कर लेता हूँ, मेरी बात सुन ली। जितनी भी डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, जितनी भी डिबेट हो रही है, वो एक आदमी जो 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 इमरान का सपोर्टर है वो इमरान की बात कर रहा है, जो पीएमएलएन का सपोर्टर, आप मुझे बताइए इसमें पाकिस्तान की कहां बात हो रही है? पाकिस्तान की तो बात कोई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पार्टियों के मफादात कुछ ज्यादा अहम है और आप पाकिस्तान के लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? और इस पर मैं बाद में भी बात करूंगा कि आप हम कहां जा रहे हैं, हकीकत समझो। क्या सवाल पैदा होता है, मैं वैसे बड़ी आजकल एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान की जो 75 साल की तारीख है, हमें किसने माली इमदाद की? हम तो सारी कहानी माली इमदाद के घूम रही है ना, इसमें तो कोई शक की बात, कभी सऊदी अरब से 6 बिलियन मिल गए, कभी डेफर्ड पेमेंट पे तेल मिल गया। जब हम बैसाखियों के सागे आगे जा रहे हैं तो क्या हम अमेरिका से लड़कर पाकिस्तान को बचा सकते हैं? क्या पाकिस्तान की बका अमेरिका की दोस्ती से वाबस्ता है या नहीं?
मैं आपको ये बताऊं कि ऑल ऑफ अ सडन हम कंक्लूजन पर चले आते हैं कि अगर अगर आप ये समझें कि हम ये कहते हैं कि अमेरिका से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, अमेरिकन पॉलिसीज जो है उसके हम खिलाफ हैं, तो अगर हम अमेरिका की कोई एक पॉलिसी या दो पॉलिसी के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। नो, हम हो सकता है कि उसके अमेरिका में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन में देख ले, दे डोंट एग्री टू डिसएग्री।
आपके हम सारे लोगों को तो मैंने ये कहते नहीं सुना अभी तक। मैंने तो नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, माफ कीजिएगा, माफ की हकीकत पे बात हो रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपके हम ख्याल लोग तो ये नहीं कहते। बहरहाल अब गो हेड, बहरहाल गो हेड, बहरहाल आपका अपना, मैं आपका नुकसान नजर सुनने के लिए मैंने एक बात कह दी अपने हिसाब से, मुमकिन है मेरा ख्याल गलत हो, गो हेड।
ओके, अच्छा हमारे साथ फयाज विलारा भी हमारे साथ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले इनको तो आना चाहिए था यहाँ पर, वो आए नहीं है, उन पे तो जुर्माना लगेगा।
जी जी, 50,000 का, जैसे वो कंजर्वेटिव पार्टी ने लगाया ना पीएस फॉरएवर पे, ना आने के लिए, ना आने, जो नहीं आता उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना होता है।
हाँ जी,
तो लेस्ली लुइस और पीएस फॉरएवर जो है उनके ऊपर 50,000 के जुर्माने हैं
बस।
तो फयाज भाई के ऊपर,
फयाज भी भाई आप पे तो जुर्माना हो गया। फयाज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सर कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम दोस्तों को, अहबाब को जो स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका तमाम जो प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, मैंने आना था लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ थोड़ी सी ऐसे अनफोर्सीन चीजें थी तो मैं नहीं आ सका, आई गॉट स्टक हियर। तो आपकी बात मैं सुन रहा था, माशाल्लाह लताफत साहब ने काफी संजीदा बात की, अनवर इकबाल साहब की बात मैं नहीं सुन सका, लेकिन राणा सोहेल साहब और तौसीफ साहब की हल्की फुल्की मैंने बात सुनी। तो अब आप जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करना चाहते हैं या इधर नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी की कोई खिदमत खातिर करना चाहते हैं
आप? हाँ, ये हमारी जैसे शाजिया कहती है ना, कटे खोल दिए, तो आप कटा खोलो पहले।
तो माशाल्लाह आपने अच्छी महफिल जमाई हुई है और इसी तरह हंसते खेलते रहे सारे आप। तो बात बाजवा साहब से शुरू करनी है, नैन्सी पेलोसी से?
जी जी, शुरू कर ले बाजवा साहब से।
बाजवा साहब जो हैं वो बाजवा साहब के सितारे इंतहाई गर्दिश में हैं।
अच्छा,
शायद उनके उनकी पिछली 28-30 साल की जो कैरियर था उनका, अब वो सोचते होंगे कि मैंने ये दूसरी एक्सटेंशन ली क्यों थी, अगर ये मैंने यही मेरे साथ होना था कि इतनी सर्विस पाकिस्तान आर्मी की और उसके बाद इनकी पार्लियामेंटेरियंस की एक्सटेंशन, चाहे मेरी ख्वाहिश थी चाहे इनके वोट से चाहे कुछ भी था, चाहे वाकई जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी, जिस तरह भी मैंने एक्सटेंशन ले ली, लेकिन आखिरी अगर 2-4 महीने मेरे साथ ये होना था तो इससे बेहतर था मैं एक्सटेंशन लेता ही ना। लेकिन कुछ चीजें ये होती हैं कि जब हम कहते हैं ना कि कौमें जो हैं टाइम लगता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और फिर कहीं अशरों में और सदियों में जाके कौमें बनती हैं, शायद हमारी कौम का इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इससे ज्यादा बेहतर कोई टाइम नहीं था जो जिस शक्ल में हमारी कौम अब उभर के सामने आ रही है। आप देखें ना, हमारी इस वक्त जो टॉप की लीडरशिप है ना, آصف علی زرداری صاحب دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، سارے اس وقت جو ہے بالکل نشانے پہ ہیں، انکلوڈنگ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نشانے پہ ہیں. کوئی بندہ اس وقت ہمارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور 1 کروڑ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کوئی بندہ کسی کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہے. لوگوں کو ایک ایک پل کی خبر پہنچ رہی ہے، اور تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ بہت آزادی بھی ہے کہ لوگ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات آگے شیئر بھی کرتے ہیں، ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں، چاہے بعد میں پتہ چلے کہ وہ ام حریم کوئی جو تھی وہ کوئی پتہ نہیں کون تھی. تو چاہے ام حریم کے بہانے سے چیزیں نکل آئیں، چاہے کسی اور کے بہانے سے نکل آئیں، چیزیں اب دبی ہوئی نہیں رہ سکتی، چیزیں باہر آتی ہیں. باہر جب چیزیں آئیں گی تو اس سے یقیناً ہماری قوم ایٹ لارج اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لرننگ لوگوں کو ہو رہی ہے، لوگ لرن کر رہے ہیں. یہ جو آج ہم یہاں بیٹھ کے اتنی کھل کے لیے لطافت صاحب اور رانا صاحب اور توصیف صاحب اور شازیہ بہن ہماری اور ماجد جمال صاحب اور عرفہ باجی، ہم سارے اتنے کھل کے بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک پروسیس کے نتیجے میں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا. ہم رٹی پٹی پریس ریلیزوں پہ گزارا کرتے تھے، لیکن اب بات بہت آگے نکل چکی ہے اور میرے خیال میں اسی شر میں سے خیر نکلے گا.
عرفہ جی ہمارے ساتھ ہیں. جی عرفہ جی.
ماجد بھائی، میں بہت شکریہ ان تمام کا جو لوگ حاضر ہوئے، اور انور اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ یقیناً موجود ہیں. میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ رانا سہیل صاحب نے جو بات کی کہ تاریخ پڑھائی جائے، اور سچی تاریخ پڑھائی جائے اسٹوڈنٹس کو، نمبر ایک. نمبر دو، ہم ساتھ ساتھ کنکلوڈ بھی کرتے جائیں جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے. جو اس وقت صحافی ہیں ان کے اوپر بہت ان پہ شولڈرز ہے. رادر دین بی پارٹ آف اے پارٹی، اگر ہم پارٹ آف پاکستان بنے تو صحیح بن سکتے ہیں. ابھی فیضان بیلانا صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پیپل آر آن دا سیم پیج، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ اچھائی کا غلط استعمال بھی ہے. سوشل میڈیا پہ 70% سے زیادہ نیوز جو آپ کو ملتی ہے یا جو میسج ملتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ میسج ہیں. ڈو ناٹ اسپریڈ اینی میسج وداؤٹ کنفرمیشن آف دا سبجیکٹ کہ بھائی یہ صحیح خبر ہے یا غلط ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ پارٹیاں بننے کی وجہ سے ایسی نیوز بعض اوقات ڈال دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اب میں آخری بات پہ آتی ہوں جناب لطافت صدیقی صاحب کی، اور جو لطافت بھائی کا ایکسپیرینس ہے میں اس میرا تجربہ اس کے اشیر بھی نہیں ہے، مگر لطافت بھائی نے کہا کہ ہمیں امریکہ پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا وزن ضرور رکھیں. جو بیگرز ہوتے ہیں دے کین نیور چوز. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں سسٹم اتنا اسٹرکٹ کرنا چاہیے جو کہ 70 سال سے نہیں ہو سکا، ٹیکس، اگر آپ کے ملک میں پیسہ کم ہے نا تو آپ ٹیکس کے اوپر انحصار کر، لوگوں کا ٹیکس، جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے، انڈسٹریلسٹ جو ٹیکس پے نہیں کرتے، جو سیلف امپلائڈ ہیں وہ ٹیکس نہیں پے کرتے، ان سے ٹیکس کی وصولی زیادہ کر کے ملک کا ریونیو بڑھایا جائے، رادر دین کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں جی ہاں آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں گے. اور یہ آئی ایم ایف سے کوئی پہلی دفعہ قرضہ نہیں، سال آ سال سے یہ قرضے لیتے چلے آ رہے ہیں. اب آئی ایم ایف ہماری مجبوری کیوں ہے؟ یا ہمیں یو ایس ایڈ چاہیے یا ہمیں آئی ایم ایف چاہیے، تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ یا اپنی بیسز دیں گے؟ آپ انڈیا والا اپنا وزن رکھیں. یو شوڈ ہیو اے کریج ٹو سے نو ویئر یو ہیو ٹو سے نو. اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو اپنے ملک کے اندر صحافیوں پہ ذمہ داری جاتی ہے کہ صحافی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اگر تم نے اس ملک میں رہنا ہے تو بجائے اس کے اس ملک سے پیسہ نکال کے لے کے جاؤ، واٹ ایور انکم یو ہیو لوپ ہولز کا فائدہ لو. نارتھ امریکہ میں بھی لوگ لیتے ہیں، مگر ٹیکس ہر بندہ پے کرے، یہ نہیں کہ صرف تنخواہ دار ٹیکس پے کرے، تو وہاں آپ اپنا ریویو جنریٹ کر سکتے ہیں. وی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انڈیا کی طرح سے، انڈیا یوکرین کی وار کے بیچ میں تو جیو پالیٹکس کی ذکر کر رہی ہوں نا کہ کیسے افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کو، انڈیا کی طرح سے آپ رشیا کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، آپ چائنا کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، اور آپ امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں. آپ نے ماجد بھائی بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں پالیسیز سے اختلاف ہے، کہ آپ ہمیں بیچنے پہ کیوں آئے ہیں. میرا بالکل اس بات پہ سٹینڈ ہے کہ اگر میرے ملک کا رکھوالا جا کے کسی سے پیسہ مانگے گا تو وہ کمپرومائز کروائے گا نیشن کو. अगर वो पॉलिटिशियन से कहता है, पॉलिटिशियन क्योंकि ही इज डेफिनेटली आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहे कि हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करें, आप अपनी जो आपके पोजीशन पे जो लोग हैं उन लोगों को चेंज करें ताकि टैक्स की जनरेशन उन लोगों से हो जो डेफिनेटली पाकिस्तान को ओ करते हैं। सिफारिश का सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये खत्म कैसे होगा? सहाफियों की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जहां रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, दूसरी तरफ सहाफी पार्टी है या एक हुकूमत की पार्टी है या दूसरी हुकूमत की पार्टी है, वी शुड नॉट बी पार्ट एंड पार्सल। और सहाफियों की इस वजह से आम आदमी जो है वो पार्टी, आप बात करें तरीके इंसाफ वाले आपको गंदी से गंदी गाली देने पे तैयार हो जाते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले आपको गंदी से गंदी गाली देने पे तैयार हो जाते हैं अगर आप किसी एक बंदे की बात करते हैं। तो ये किसी को एजुकेट करना होगा, बजाय बिकमिंग अ पार्टी टू समवन, उसमें पढ़ा लिखा तबका भी सपोर्ट करे, आप लोगों को एजुकेट करें कि अगर आपको सोशल मीडिया पे न्यूज मिलती है तो आपने उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करना है। डू नॉट फॉरवर्ड एनी न्यूज विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी। और टैक्स आप रिसीव करें। बट आई थिंक सो यस, अमेरिका वक्त का फिरौन है, इसमें कोई शक नहीं, बट वी कैनॉट लीव अदर वर्ल्ड एज वेल, वी हैव टू कीप देम आर फ्रेंड्स रादर देन मेकिंग आर फोर्स। तो आप हर वक्त पैसा मांगने के बारे में मत सोचें। क्यों मैं ये सोचूं कि कोई फिर उसके जवाब में तो मेरे मुंह पे चपेट ही पन्नी है ना कि डॉलर की खातर पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच सकता है। अमेरिका, वी रिस्पेक्ट अमेरिका, वी काउंट ऑन अमेरिका, मगर हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके, डू नॉट लुक एट अदर्स पॉकेट्स, हम अपने मुल्क से जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आपका लैंडलॉर्ड है, वो टैक्स पे करे और वो मुल्क में रेवेन्यू जमा करे। बहुत शुक्रिया टेकिंग माय
कॉल। आरफा जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप
ये बार बार यू आर अ बिगेस्ट पार्टी माजिद भाई, मैं किसी और को क्या दूं, आप तो खुद पार्टी हो।
पार्टी का नाम भी नहीं लेते।
राजा सुहेल कुछ कहना चाहिए। राजा साहब,
आरफा भाजी ने अभी बात की है कि जब मुल्क का रखवाला दूसरे लोगों से पैसे मांगने के लिए जाएगा तो हमारी इज्जत क्या रहेगी, तो वो हमारा सब कुछ स्टेक पे जो लग रहा है सब कुछ दूसरे को दे देगा, यही कहा ना इन्होंने।
अच्छा, ये पिछले 50 सालों में पहली दफा, बल्कि मेरे ख्याल जब से पाकिस्तान की तारीख है, पहली दफा को ऐसा हुआ है कि कोई आदमी दूसरे नहीं, वैसे पैसे पर्दा तो रहे होंगे और वो फंड वगैरह रहे
हैं पाकिस्तान में। अजीब सी बात लग रही है, हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 75 साल जितने भी साल हैं उसमें ये बदहाली तो नहीं थी ना,
नहीं थी।
अब तो मजबूरी है, अब आपको समझ आ रही है कि क्या होने जा रहा है। और मैं आरफा जी की बात भी कैमरा करता चलूं, उन्होंने मुझसे बात की है
साहब के शहबाज शरीफ साहब का वो जो ठप्पा लगा हुआ था ना कि बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ठप्पा भी अब खत्म।
देखिए, मैं ब्लेम गेम में जाना ही नहीं चाहता हूं, पहली बात तो ये, मैं
ब्लेम गेम कर नहीं रहे।
देखिए, मैं सिर्फ ये, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं और आपका यकीनन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं आई एडमायर और आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आरफा जी ने बातें की हैं जो उनकी ख्वाहिशात हैं, दरअसल वही हमारी ख्वाहिशात हैं। हम कोई भी हम चाहे कितने भी आप चार्ज लगा लें, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं है, ना कोई गद्दार है। ये बांटने का जो चार्जेस लगाने का था, वह खत्म हो गई। हमें हकीकत सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। अगर कोई ये कहता है, मैं ये कहता हूं, मैं प्रो पाकिस्तानी होकर ये सोचता हूं कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है, पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकाला जाए, उसमें मेरे ख्याल में ये है कि हमें पाकिस्तान को बहुत सारे मुल्कों से, सऊदी अरब हो या कोई और भी मुल्क हो, उनसे हमें अपने बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए, ताकि हमारा वक्फ है। और मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पसे पर्दा कुछ ना कुछ पेशरफ्त आई है।
जी, जी, जी।
और वो पेशरफ्त ये है कि आपने देखा कि IMF से आपको 1.2 मिलियन वाले हैं, UAE में जो आपने बात की है वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, सऊदी अरब ने इंडिकेशन दिया है कि हम $3-4 billion आपको देंगे, पेट्रोल की भी बात की है। तो वो सारे के सारे कमिटमेंट अब पूरे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे के सारे जो कमिटमेंट होने जा रहे हैं या पाकिस्तान को पैसा मिलना है दिया जा रहा है, ये अमेरिका के इशारे के बगैर हो रहा है? नहीं, वो अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। और अगर हमारी बका, हमने अपने गलत कामों से, गलत फैसलों से, अगर हमने अपनी बका को अमेरिका से वाबस्ता किया हुआ, जब हमारे अच्छे हालात थे तो हम कोई भी फैसला कर सकते थे। अब तो हमारे पास फैसला करने के लिए फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप क्या बात कर सकते हैं? आप अपने से बड़े मुल्कों से कैसे लड़ सकते हैं? और अगर नहीं लड़ सकते तो क्या आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि उनसे दोस्ती करके अपने पाकिस्तान को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं? दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर अगर आपका नुकसान अगर ये है कि नहीं हमें पाकिस्तान पाकिस्तान को सुनिए आखिरी बात, अगर हमारा नुकता नजर ये है कि नहीं हमें अमेरिका से आजादी आज चाहिए,
बिस्मिल्लाह। तो
बात मैंने शुरू की थी आरफाबाजी की बात पे, बात मैंने शुरू की थी, मेरा पहला राइट है
जी आपका राइट है।
आरफाबाजी ने बात की जब मुल्क का रखवाला खुद पैसे लेने के लिए चला जाए तो हमारे पीछे क्या बचा। यहाँ पर मैं एक दो बातें करूंगा, बिल्कुल कड़वी करूंगा और सच्ची बातें करूंगा, ठीक है
जी।
वो पहली बात तो ये है, नहीं आपका मुत्तफिक होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, जैसे मैंने मुल्क की तारीख की बात की है कि सच्ची पढ़ाई जाए। दूसरा, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान की मर्जी से लगना चाहिए।
यस दैट्स राइट, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है,
आप आराम से
बैठिए। मैं
तो आपकी बात
मिला रहा हूँ,
नहीं मैं मिला रही हूँ।
पाकिस्तान बात हकीकत की हो रही है,
क्योंकि पाकिस्तान की मर्जी से
बोलना नहीं चाहिए, ये एक और कट्टा खुल जाएगा। लेकिन ये पूरी बुक लिखी हुई है इस पे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी जो है उसकी मर्जी से नहीं आता।
और दूसरा, उसके अंदर ना आर्मी के अंदर भी इनको भी रिफॉर्म्स की जरूरत है आर्मी चीफ के पोस्ट के लिए, और इन पर पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि अभी तक देखें पाकिस्तान के अंदर कितने एक्स आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं,
कोई नहीं रहता,
इन पर पाबंदी होनी। नहीं 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 नहीं,
ये सारे जर्नल इंडिया में रहते हैं,
क्या सारैया हैं
ये?
नहीं नहीं, ये क्या सारैया तो नहीं है, ये हकीकत का ही
है।
आज बात हो रही है हकीकत की,
पहले आर्मी चीफ की बात कर
रहा हूं, आज हकीकत पे बात हो रही है।
सारी पांच आर्मी चीफ जो है वो
पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैड लक है, एंड आई एम सेइंग विद कन्विक्शन, कि पाकिस्तानियों को कभी सच्ची बात बताई नहीं गई,
नहीं, नहीं, नहीं,
और कभी डिस्कस नहीं किया। कोई आप पाकिस्तान में फोरम बताएं जिसमें ये बता, जिसमें ये जिक्र किया गया। लेकिन देखिए अब
आप
एक लाइन, कभी पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में कभी कोई सेमिनार हुआ कि मुहिब वतनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए? कभी किसी ने ये कहा कि नेशनलिज्म जब प्रमोट होगा, जब सारे पाकिस्तानी आपके अब सारे वसाइल को शेयर करेंगे, वो ये समझेंगे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है, तभी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तभी तो आप फैसले कर सकते
हैं।
जी 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 जी, मैं बड़े सब्र से
फयाज, एक
जी 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 जी,
मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, बार बार आप ये कह रहे हैं, आपने भी कहा ये कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो चला गया वहाँ पर बात करने के लिए, हमारा आर्मी चीफ
सर, मैंने नहीं कहा बात, मुझे तो ऑब्जेक्शन,
मैंने भी अंदाज में नहीं कहा जैसे आप बयान कर रहे हैं। नहीं मैंने देखिए, नहीं मिस कोट ना करें,
वो उन्होंने मिस कोट ना करने की नौबत आई उनकी।
नहीं सर, सर नहीं देखिए आप
सारे आप लोग नहीं कह
सर, आप एंकर हैं, आपका आपका अदब है, आप इस प्रोग्राम के कप्तान हैं या डिप्टी कप्तान हैं, लेकिन ये है
कप्तान
खुदारा खुदारा एक बात का ख्याल रखिए कि हमें मिसकोट ना करें, हमने जो कहा है वो बात करें। और ये कि रिपोर्टर जब लेता है, रिपोर्टर लिखता है, कभी कभी वो मेंटल लोड्स भी लेता है, लेकिन उनके फैक्ट्स बड़े
बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ओके सर, मैं आपके आप लेट मी चेंज माय वर्डिंग्स, आपने कहा हो ना कहा हो, बहुत सारे लोग यही भी बैठे हुए कहते हैं कि ये जो है आर्मी चीफ ने क्यों जाके बात की। हमारे यहाँ कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि आर्मी चीफ जो है वो इस जाके अपने ओहदे से
बात तो ठीक है,
बात
मैंने की, मैं
ये कहता हूँ कि आप
बात तो ठीक है, लेकिन जरूरत भी कुछ और है।
जरूरत नहीं, ضرورت نہیں, آپ ضرورت کی بات نہ کریں.
میں بولوں
کہتا ہوں کہ
میں بولوں کہ نہ بولوں,
اگر یہ جو ہے یہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہے,
آپ جو ضرورت کی بات کہہ رہے ہیں, اگر ایک آدمی بھوکا ہے
مجھے پورا
اس کو لیکچر سنے گا یا روٹی مانگے گا؟
نہیں نہیں
نہیں, صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں مختصر بتانا چاہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کسی اور پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس لیے باجوہ صاحب خود گئے.
نہیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اگر میرا امپلائی
تو امریکہ ٹرسٹ کرتے ہیں باجوہ صاحب,
میرا امپلائی یہ جو آرمی کے چیف ہیں وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو, اگر وہ پرائم منسٹر کے بغیر اجازت کے یا پرائم منسٹر کو اجازت دے رہا ہے تو اس کا مطلب پرائم منسٹر از زیرو, کہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں اسے, یار تم بات کرو, میں کل آپ کو فون کروں کہ یار آپ, میں بات نہیں کر سکتا, لطافت صدیقی صاحب سے مجھے $200 چاہیے, یار آپ بات کر کے بتا دیں, تو یار میں خود لطافت صدیقی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے,
ٹرسٹ نہیں ہے ان کو, ٹرسٹ ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے.
اس کے حوالے سے میں ایک لمحے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
جی,
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کیوں کیا یہ کیا, اصل میں ہم یہ بات کہنے سے گریز کر رہے ہیں کہ ریئل پاور تو ہمیشہ راولپنڈی میں تھی, اس پرائم منسٹر تو آپ کا راولپنڈی میں بنتا ہے اور پاکستان اسلام آباد میں تو نہیں بنتا. آپ سن کر سر, آپ دوسری قیاس ہرائی, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر میں حقیقت کی بتانا چاہ رہا ہوں, سی بی سی پہ ایک انٹرویو چل رہا ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, تو وہاں پر پاکستان کی فورن امریکہ کی فورن سیکرٹری بیٹھی ہیں, اور وہ فورن سیکرٹری کا مطلب ہے فورن منسٹر بیٹھی ہیں, تو اینکر ان سے پوچھتا ہے کہ بار بار آپ, میں کوئی بھی سوال پوچھتا ہوں آپ آرمی چیف کا ذکر کرتی ہیں اور آئی ایس آئی کا چیف کا ذکر کرتی ہیں, واٹ ڈز اٹ مین؟ اس نے کہا کہ یہی لوگ تو ہیں جن سے بات کرنی ہے, بس اب آپ جو مرضی.
اچھا فیاض بھائی, یہ دو چیزوں پہ کر دیں, ایک تو یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر جو پانچ پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف باہر بیٹھے ہیں ان کے ذرا نام گنوا دیں.
اچھا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماجد جمال صاحب نے ایک بات کی تھی, ماجد جمال صاحب نے بہت اچھی ایگزامپل دی تھی کہ اگر کسی سے ₹200 لینے ہیں اور میں خود لینے نہ جاؤں اور کسی کو کہوں کہ یار آپ ان سے بات کرو, اور جس کو کہوں وہ میرے ماتحت ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی سے نہیں ہے, اور جس طرح رانا سہیل صاحب نے کہا کہ شاید وہ جس سے بات کرنی ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور آپ پہلے اتنی دفعہ آپ اپنا ان کے ساتھ ہاتھ کر چکے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو ایگزامپل آپ نے ایک عام سی ایگزامپل دی ہے, لیکن ایکچولی ایگزامپل یہی ہے, اور یہ جو لطافت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل پاور تو پنڈی میں ہے, تو بات یہ ہے کہ توصیف صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا, تو آپ سب دوستوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ بات وہاں ختم ہوتی ہے جا کے عارفہ باجی کی بات پہ, انہوں نے کہا کہ ہمارے میڈیا کو جب تک ہمارا اپنا رول صحیح پلے نہیں کرے گا اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اگر یہ ریئلائزیشن سب کو ہو گئی ہے, ابھی اس چھوٹی سی بیٹھک میں پانچ بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندے کا اپنا مختلف ایک نظریہ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ بات اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہمارے جو حکمران تھے, اسپیشلی سول حکمران, انہوں نے اپنا کردار اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا, اور آج صورت یہ آ گئی ہے کہ وہ اپنے ایک ماتحت ملازم کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سے بات کرنا اور اس سے میرے جو ہے وہ فلاں پیسے نکلوا دو. یہ بات اس نتیجے اس نہج پہ پہنچ چکی ہے, اور وہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود اتنی دفعہ مداخلت کی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں جی آرمی چیف فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا, کہ اب ہمارے چیف کے ساتھ کنٹری اور ریزورٹ منسلک ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل جنرل پرویز کیانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا میں کوئی بہت بڑی اپنی جو ہے امپائر کھڑی کی ہوئی ہے, اپنے راحیل شریف صاحب کے بارے میں کہ جی وہ سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا عیاشی کر رہے ہیں, پرویز مشرف صاحب دبئی میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں, اور اب جو ہمارے موجودہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کے نام پہ بیلجیم اٹیچ ہو گیا ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ بالکل یہ سارے قصے کہانیاں اپنی جگہ, لیکن اگر اس وقت سول سپریمیسی کی بات آئی, آج ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی وہ ہم سے وہاں آئی ایم ایف سے اور امریکہ سے پیسے لینے کیوں گیا, لیکن اگر ہم سارے مخلص تھے اور ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاسی قیادت مخلص تھی, تو جب عمران خان نے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پہ کہا تھا کہ بھائی میرے انڈر وہ بندہ ہے تو مجھ سے پوچھ کے اس کی ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے, تو اس وقت اگر ہماری سیاسی قیادت مخلص ہوتی سول سپریمیسی کے حوالے سے, تو کہہ دیتے کہ ہاں بھائی عمران خان نے ٹھیک بات کی ہے. अगर DGISI उसके अंडर है तो उसे बता के उसे हटाओ या उसे पूछ के हटाओ, आप तो बताते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है, बंदे को चेंज करके तो आगे चल पड़ते हैं। उस वक्त इमरान खान ने एक छोटी सी बात पे स्टैंड लिया था, लेकिन उस छोटी सी बात वो जो है वो एक लिटमस टेस्ट था। हमारी अभी तक हम इतने मेच्योर नहीं हुए एज ए नेशन कि हम किसी भी लिटमस टेस्ट को पास कर सकें, हमने पास नहीं किया, इसलिए आज ये नौबत पहुंच चुकी है। अगर उस दिन वहां सारी सियासी क्यादत खड़ी हो जाती कि हाँ भाई हम सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान के, पॉलिटिकली हम उसके मुखालिफ हैं, हमारा उसके साथ अपना झगड़ा किससे कहानियां जो हैं वो हैं, लेकिन ये जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, तो आज शायद जनरल बाजवा साहब का ये जो हमारा है, आज शहबाज शरीफ साहब को भी और अकवाम आलम को भी पता होता कि नहीं, पाकिस्तान में जिससे बात करनी है असल ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास होती है, किसी और के पास नहीं होती। वो जिस वक्त चाहे आर्मी चीफ को स्नब कर सकता है, लेकिन उस वक्त तो हम नहीं इकट्ठे हुए, क्योंकि उस वक्त इकट्ठे होते तो शायद इमरान खान ज्यादा ताकतवर हो जाता। तो बात यह है कि हम लोग जितने हम लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे अपने हमारे सियासतदान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे और लोग हैं, जब तक अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये तमाशा चलता रहेगा।
जी मौलाना साहब, मैंने आपकी बात सुनी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी एक बात से, वो ये कि जनाब ISI के चीफ के ऊपर जो इन्होंने कहा है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए था, अगर लिया था तो कौम को उनका साथ देना चाहिए था। मैं समझता हूँ जो लिटमस
कौम नहीं, कौम कहीं नहीं स्टैंड करती भाई मेरे, कौम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, कौम की कौन सुनता है। मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून, मैं कहता हूँ JUI, मैं कहता हूँ जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद थे वो खड़े हो जाते
हैं। सर जी मौलाना साहब, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि इससे भी बड़ा एक इशू आया था जिसके ऊपर अगर इमरान खान स्टैंड लेते तो अगर पूरी कौम या सारे पॉलिटिशियन साथ ना होते तो फिर हम कहते, उन्हें तो टाइम ही दिया गया, क्यों एक्सटेंशन देगी बाजवा साहब को?
बिल्कुल गलत
हुई। बात कर
गलत है ना, गलत है ना सर,
अगर वहाँ पे गलत हुआ तो फिर आगे भी गलत होगा ना।
बिल्कुल ठीक है,
जो बात कर
लता सिद्दीकी साहब जी, मैं जोर से आ रहा
हूँ, जोश नहीं आ रहा। बात क्या होती है, अगर वलाना साहब सभी हम सभी जर्नलिस्ट हैं, अपनी अपनी अपने अपने नजरियात भी होते हैं, नुकता नजर होता है, कोई आदमी न्यूट्रल तो नहीं होता और बकौल न्यूट्रल तो एनिमल होता है, मैंने किसी को भी नहीं कहा, सॉरी आई विड्रॉ। मगर लेकिन एक बात ये थी, लेकिन मैंने कभी अपने मोहसिन को एनिमल नहीं कहा, ये मेरी तारीख है। किसी भी किसी ने मिसाल के तौर पर नजमुल हसन यहाँ काम करते हैं, वो उन्होंने मुझे नौकरी दी दिलवाई, तो मैं उनको एनिमल तो नहीं कहता। तो जो अगर मैं बात कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं माइक मुझे मेरे पास तो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौलाना साहब की खिदमत में भी, आपकी खिदमत में भी और अपनी खिदमत में भी, कि देखिए इमरान खान, इसमें तो दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब को फौज लेके आई उन्होंने निकाल दिया, इस पे तो ज्यादातर लोग मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर कोई मुत्तफिक ना भी हो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, हमने मुखालफत
अपनी बात कर लेते हैं सारे लोग।
देखिए मेरी बात सुनिए, हमने एज ए जर्नलिस्ट, हम तीनों बैठे हैं कम अज कम, और मैं इन लोगों को दोनों को जानता हूँ, आप भी, आपसे चूंकि मुलाकात नहीं थी जब इमरान खान, जब अमेरिका, जब इमरान खान साहब 2018 में इक्तदार में लाए गए, तो हमने उस वक्त भी यही कहा था कि उनको जबरदस्ती जिताया गया और ये धांधली की गई, आज भी किया। अब फिर हमने जब इमरान खान साहब को उन्हीं कुव्वतों ने निकाल दिया, तो हमारा मेरा नुकता नजर ये है कि यार जब तुम लेके आए ही थे तो एक साल और उसे करने देते तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस ना होता। तो हमारा तो नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है, हम तो बड़े बहुत पहले से, जब से जर्नलिस्ट बने हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो पावर है उसको अच्छी तरह जानते।
तो अब जो ये अब जब ये इमरान खान के, अगेन मैं बताना चाहूं मैं कि मेरा कोई इमरान खान से कोई प्यार बहुत,
तो मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको फौज ने निकाल दिया तो आपको फौज को गाली दे रहे हैं और अमेरिका को भी इस हाथ में गाली दे रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं?
फौज लाई। अब जो ये डेढ़ लाख 2 लाख 4 लाख आदमी जो उसके बातें सुनने के लिए आता है, उसको भी फौज ने कहा
भाई मुझे उससे वो बात की बात है।
राजीव भाई, बात ये है इस सारी सिचुएशन में, जो इसमें कोई शक नहीं कि उनका वोट बैंक बहुत है, उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनकी बात सुनने वाले बहुत हैं, और वो एक जो जलसा करते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं। अब बात वही है कि इल्जाम किसी एक तरफ ना जाए, उन्होंने जो अपना एक बयानिया बनाया, लोग उससे इत्तफाक भी करते हैं, इत्तफाक नहीं भी करते। आप एक तरफ अगर एक شخص یہ کہہ رہا ہے
ڈیموکریسی,
یہی تو میں کہہ رہا ہوں,
یہ ڈیموکریسی,
ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں
کہ ابھی ہم تو بولنے دینا
ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھوڑا ہے تھوڑی ہے کہ آپ ایک طرفہ بات کریں, ڈیموکریسی کا مطلب
ہمارے یہ بتانا کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے, کوئی ایک بتا دیں, مفاد پر ہوتی ہے نا, پارٹیوں کی بھی لیڈرز کی بھی,
نہیں ہونی چاہیے نا
جی,
نہیں ہونی چاہیے, فیاض بھائی کہہ رہے ہیں
نہیں ہونی چاہیے, نظریے پہ ہونی چاہیے, اور نظریے پہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے, نظریے پہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے کہ ایک پرائم منسٹر نے یہ کام کرنا چاہا, ایک آرمی چیف نے اسے یہ کام نہیں کرنے دیا, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مسٹر عمران خان نے یہ کرنا چاہا, آپ باجوا نے نہیں کرنے دیا, نواز شریف نے یہ کرنا چاہا, مشرف نے یہ نہیں کرنے دیا, جب ہم شخصیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر نظریات پیچھے رہ جاتے ہیں, شخصیات آگے آ جاتی ہیں, ہمیں شخصیات سے قطع نظر ہمیں نظریے کی بات کرنی چاہیے, اگر کارگل ایشو پہ, اگر کارگل ایشو پہ نواز شریف جو کرنا چاہتا تھا وہ مشرف نے نہیں کرنے دیا تو اس وقت ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا, ہمارے اس وقت بھی لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا, آج اگر عمران خان سٹینڈ لینا چاہتا تھا تو عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوئے, اور حتیٰ کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن آفیشیل اپوزیشن تھی اس کے قائد میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سول سپریمیسی کے نعرے لگا رہے تھے, اور جب سول سپریمیسی پہ عملی طور پر کچھ کرنے کا وقت ہوا تو وہ ساتھ مل گئے, پھر جا کے آپ اگر عمران خان بھی آج اگر آرمی کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا کے پھر شہباز شریف کو ہٹا دیتا ہے تو عمران خان کو بھی ہم اسی طرح برا بھلا کہیں گے,
لیکن یہ ممکن ہے بلانا صاحب,
نہیں ہونا چاہیے نا,
ابھی
میں تو کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے,
دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اکانومی دنیا کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, آپ وہ دیکھ لیں گے
پاکستان کی اپنی اکانومی کے حالات دیکھ لیں,
اور ہم اکانومی کو دنیا کے جو حالات ہیں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہم,
کیونکہ
یہ کیسے کہہ رہے ہیں
پاکستان جو ہے
پوائنٹ آف آرڈر سے پارلیمنٹ میں ایسے ہوتا ہے, پوائنٹ آف آرڈر میری بات سنیے, آپ پھر مس کوٹ کر رہے ہیں, عارفہ باغی نے تقریباً اگر میں نے گھڑی نہیں دیکھی تو 18 منٹ یہ بتایا کہ جیو پولیٹکس نے کہا,
میں نقطہ اعتراض پہ بات کرنا چاہتا ہوں,
کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پولیٹکس, ہمارا تو پروگرام ہی 18 منٹ کی انٹرنیشنل پولیٹکس کے بعد, غلط بیان نہ کریں,
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پاکستانیوں کو ابھی جو مشغول کیا ہوا ہے نا, پورا بزی رکھا گیا ہے, وہ پنجاب کی حکومت چودھری, دونوں بھائیوں کی چودھریوں کی الہی کی, ان میں جناب علی زرداری کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ چودھری کیا کر رہے ہیں اور عمر کیا کر رہا ہے, اسی میں اتنا بزی رکھا ہے ہمیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ جو چیز ہے اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا, میرا خیال ہے کہ وہ
میں نقطہ اعتراض پہ ایک چھوٹی سی جو ہے اسپیکر کو مینشن کرنا چاہتا ہوں, نقطہ اعتراض پہ کہ لطافت صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عارفہ باجی کا, ہم تو عارفہ باجی کہہ لیں لطافت بھائی نے کس حساب میں عارفہ باجی کہا,
ان کا نام یہ رکھا
ہے, دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں, باجی جو ہے پتہ نہیں کیوں آپ, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کی بات, اپنی بڑی بیٹی کو باجی کہتے ہیں باپ, ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں,
ظاہر ہے
حالانکہ وہ بیٹی ہے میری, میں مدیحہ باجی کہتا ہوں اپنی بیٹی کو, اور میں نے بہت سے لوگوں کا باجی اور عارفہ باجی کو سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ یقیناً وہ ہاں احترامن, وہ اگر ادب سے اور پیار سے باجی کہتے ہیں تو میں نے اگر کہہ دیا تو میں تو فخر کرتا ہوں, میں تو میں, اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے
مجھے بھی شازیہ باجی بول رہا ہے,
نہیں میں نے شروع نہیں کیا, عارفہ باجی جب ریڈیو پہ آئی اور میری جب سے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے ایک پروگرام کشمیر پہ کیا تھا اور میں اس میں شریک کر رہا تھا اور ابھی انہوں نے ریڈیو نہیں کیا تھا, اس وقت سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا باجی میرے باری, اب جب ساری دنیا باجی کہہ رہی ہے تو مجھ پہ اگر الزام لگاؤ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں غلط بات نہیں کی,
اچھا عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ 9 کانسٹیٹوئنسی سے وہ خود لڑیں گے,
अच्छा ये जो सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ना, नौ हल्कों से खुद लड़ने वाला जो मामला है ना,
हाँ जी,
ये बात ये है कि आप देखें, दो दिन पहले मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की बात हुई तो शाह महमूद कुरैशी की बेटी वहां सामने आई एज ए कैंडिडेट। अब लोग कह रहे हैं कि जी इन्हें अपने, हाँ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्हें कोई और बंदा नजर नहीं आता बेटे बेटी के अलावा। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में और पंजाब में बिलखसूस कोई बंदा इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्शन लड़ना इट्स नॉट जस्ट कि आपने पेपर वहां सबमिट कराने हैं और नॉमिनेशन पेपर देने हैं, वहां करोड़ों का खर्चा होता है इलेक्शन में। और जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा उसे ये नहीं पता कि मुझे इलेक्ट होने के बाद फौरी तौर पर चेयरमैन कहेगा पार्टी का कि रिजाइन करो तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा अगले दिन। और अगर हम दूसरी पार्टी का कहता है कि मैं भी इलेक्ट हो गया तो कोई पता नहीं किस वक्त असेंबलियां टूट जाए, तो इस वक्त कोई भारी भरकम तो कैंडिडेट मैदान में आना ही नहीं चाहता। जिसको फॉर एग्जांपल पंजाब में परवेज इलाही साहब ने कहा जी कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगले अगर हफ्ते में इमरान खान कहेगा तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। चीफ मिनिस्टर जो इतने 186 वोट लेके चीफ मिनिस्टर बन रहा है वो भी कह रहा है कि मैं आधे घंटे में तोड़ दूंगा। इसका मतलब है वहां पे यकीनी की सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि कोई संजीदा कैंडिडेट तो सामने आना नहीं चाहता। वहां अब क्या हो रहा है कि ये स्मार्ट हैं गिलानी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। गिलानी साहब ने, यूसुफ अज़ा गिलानी साहब ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया और इन्होंने अपनी बेटी को, इन्होंने कहा कि एक तो और कोई कैंडिडेट आ नहीं रहा तो चलो ये नेट प्रैक्टिस अपने बच्चों की करा लें और अगर इनके बच्चे इलेक्शन में अच्छे वोट ले लेंगे 40-40, 50-50 हजार, जीते कोई भी हारे कोई भी, वो अगले आम इंतखाबात में अपनी पार्टी से टिकट लेने के हकदार होंगे। तो ये बड़ी स्मार्ट मूव है शाह महमूद कुरैशी की भी और यूसुफ रजा गिलानी की भी। अब जो इमरान खान ने कहा है कि 9 हलकों से मैं लड़ूंगा, इमरान खान ने पॉलिटिकली उसने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इमरान खान अगर खुद कैंडिडेट होगा फॉर एग्जांपल 9 हलकों में तो हर हलके में लोग जिस तरह कहते हैं कि जी इमरान खान ठीक है बाकी खराब हैं, और जो इसके फॉलोअर हैं जो इस वक्त इसकी वेव बनी हुई है पाकिस्तान भर में, वहां हर बंदा इसको वोट, वो कहेगा जी मैं इमरान खान को वोट दे रहा हूं। नीचे जो टिकटों की तकसीम पे झगड़े होते थे, कोई गरीब था कोई अमीर था, फंड रेजिंग के झगड़े होते थे, फिर वहां ग्रुप बने हुए हैं, फिर वहां लोटाइज्म है, कोई इस पार्टी से छोड़ के आ रहा है उस पार्टी से आ रहा है, इलेक्टेबल्स का मसला है, तो सारे मसलों का हल इमरान खान ने ये कहा कि 9 हलकों से मैं खुद लड़ूंगा। अब वहां उन हलकों में जो उसके फॉलोअर हैं वो तो उसे वोट देंगे, लेकिन ये होगा कि अगले 2-4 दिनों में उसके खिलाफ नाअहली के जो रेफरेंसेज मूव हो रहे हैं, स्पीकर कौमी असेंबली ने आज जो है इलेक्शन कमीशन को लिख दिया लेटर कि इमरान खान ने ये गलत बातें की हैं, इसको नाअहल किया जाए इलेक्शन के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उसके केसेस खुलने वाले हैं, हाई कोर्ट्स में खुलने वाले हैं, तो इमरान खान तो कोर्टों में भागेगा या इलेक्शन लड़ेगा। तो ये जस्ट एक उसने पॉलिटिकल स्ट्रोक खेला है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि अच्छा खेला है, ठीक अच्छा खेला है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि इसका होता क्या है, क्या पता वो 9 के 9 हलकों में इसे नाअहल करार दे दें, इसलिए उन्हें जो उसके कवरिंग कैंडिडेट होंगे वो उन्हें संजीदा ही लाने पड़ेंगे और अच्छे लाने पड़ेंगे। अगर कवरिंग कैंडिडेट अच्छे ना लेके आए तो ये इमरान का ये जो इसने स्ट्रोक खेला है जो बड़ा शानदार स्ट्रोक कहा जा रहा है ये सारा बाउंस बैक हो जाएगा।
बुलाना साहब इसके ऊपर एक और भी नुकता नजर है वो ये कि पार्टी जो है पीटीआई उसमें कुछ ज्यादातर अरकान इस बात पे माने ही नहीं कि जनाब हम टिकट लेंगे, क्योंकि कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहता इतनी बिग इन्वेस्टमेंट करके।
बिल्कुल ये बात
है। इसमें बुलाना साहब ये बात है, एक और नुकता नजर है कि खान साहब ये बड़ी पॉलिटिकल मूव उन्होंने की है वो इसलिए कि 9 हलकों पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, नंबर एक किसी भी हलके के अंदर 2, 3, 4, 5 के अंदर ये जीत जाते हैं बाकी 2-3 में हार जाते हैं तो बाकी सब सीटें इनको खाली करनी पड़ेंगी, सिर्फ एक सीट रखनी पड़ेगी और जो खाली करनी पड़ेंगी उनके उनमें वो भी शामिल होगी जिसके ऊपर ये अभी भी MNA हैं और जिसके ऊपर ये ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। तो ये मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने का एक और दाव पेश है।
नहीं पॉलिटिकली वो तो यही चाह रहे हैं कि इतने परेशान हो जो बात नहीं था अल्टीमेटली इलेक्शन अनाउंस कर दें।
जी जी मैं
सिर्फ ये कह
मैं यही कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब यही तो चाहते हैं कि इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप 9 हलके में से 4, 5 या 6 जीत जाएं और उसके बाद फिर रिजाइन करें, फिर उन 6 में इलेक्शन हो, इस दौरान वो बाकी और भी इस्तीफे जो है किस्तों में कबूल कर रहे हैं और हल्के खाली हो जाएं और हर जगह इमरान खान यही तमाशा करे कि इलेक्शन खड़ा हो जाए खुद और हर दफा वो सीटें खाली करता जाए तो ये एक तमाशा बन जाएगा ना। तो वो तमाशा ही बनाना चाहता है, वो कहता है जनरल इलेक्शन कराओ पूरे पाकिस्तान में कराओ।
तो
वो पॉलिटिकली इसने ठीक मूव की है।
तौसीफ भी कुछ कहना चाह रहे
हैं। फयाज भाई ने बड़ी सही बात कही कि वो इस वक्त उन्होंने जो स्ट्रोक खेला राणा साहब, मैं जरा इससे वो इत्तेफाक नहीं करूंगा। 9 हलकों से जीतने के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा ना, उससे इनकी पार्टी को क्या बूस्ट मिलेगा या पार्टी को इनकी पोजीशन डाउन होगी, ये हम अब डिस्कशन कर रहे हैं।
दोधारी तलवार है,
दोधारी तलवार, इसमें कोई शक नहीं है।
यू टेक अ चांस।
जी मैं असल में आपकी इजाजत से मैं एक दो मिनट की बात करके आप फिर मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे तो मैं ये समझूंगा, मैं ये समझूंगा, मैं जो सोचता यहाँ, मैं जो यहाँ सोचता हुआ आ रहा था उसके हवाले से एक मिनट की बात है। अब ये जो हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से हम खेल के मैदान में आ गए हैं और हम खेल की बात भी कर लेते हैं, और जब खेल के मैदान में पहुंचे तो इमरान खान के मुस्तकबिल की बात के वो क्या दोबारा जीत सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और अमरीका से लड़कर इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा, मेरे लिए ये एक नविश्ता दीवार है। बात मेरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ खेल के हवाले से कि अगर कोई आदमी लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा रखता हो तो वो रैकलेस शॉट नहीं खेलता। ये क्रिकेट का है और दुनिया की चीजें। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि हम बिला वजह आज के दौर में अब सब मिलके हम अब जैसे यहां भी हैं, हम इमरान की भी बात कर रहे हैं, फौज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पीएमएलएन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अपने नुकता नजर, मगर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि हम सब जर्नलिस्ट और सभी लोगों को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और लड़ना नहीं चाहिए। इसी सूरत हाल पे अगर मुझे एक दो शेर मुझे याद आए हैं, ये नहीं, इसी सूरत हाल पर अहमद फराज ने कहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं कि फिर से तू कौन मैं कौन हूं आपस में सवाल। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहां कब कोई अग्यार का लश्कर उतरा, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर उतरा। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा और हमें समझाया, अब के अगर जलजले आए तो कयामत होगी, मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगो। उन्होंने ये भी कहा कि अब के अगर जलजले आए तो कयामत होगी, मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारो लोगो।
आप अगर उनकी वो वाली नज़म इस वक्त सुनाते ना तो बहुत मजा आता, जिसमें वो उनकी बहुत ही खूबसूरत नज़म थी और आज उसका मजा आता, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में एक नई चली है रस्म के कोई सर उठा के ना
चले। किससे वकील करूँ, किससे वो तो फिर ज्यादा वो अच्छा, उसको भी फैज अहमद फैज को भी तो यही डर था। फैज अहमद फैज तो शुरू से कह रहे थे कि वो मंजिल नहीं आई है अभी, जिसके लिए हमने
शेर शायरी फराज साहब की बात की है ना, तो फराज साहब का फिर मैं एक शेर बोल देती हूँ कि वो जिसमें अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन वो जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा ना हम सब सहाफियों को मिलकर एक बात करनी चाहिए, तो कह दो उनसे कि मेरा कलम अमानत है मेरी,
वो तो मैंने अपनी किताब में पढ़ा था, मेरा कलम तो अमानत है मेरी लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपाके जान से लिखा। और हम मैं आपको यकीन दे रहा हूँ, कम से कम मैं मेरे साथ जो दो लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में कह सकता हूँ, अपने बारे में कहूँ या ना कहूँ, कि ये यही कर रहे हैं। ये इस अभी इस प्रोग्राम में अगर आप गौर से रिकॉर्ड करके देखें, बात इस वक्त हकीकत की।
बिल्कुल ठीक। हाँ जी फियाज भाई, क्या
मैंने कहा शेर शायरी की बात हो रही है तो मैं भी कोई शेर जो है यहाँ अपनी शेर कोई आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जफर इकबाल साहब के दो तीन शेर हैं, वो कहते हैं कि मैं सांस ले नहीं सकता हवा रुकावट है, रुका हुआ हूँ कि खुद रास्ता रुकावट है, अभी हमारी मुलाकात हो नहीं सकती, अभी हमारी मुलाकात हो नहीं सकती कि पहले खल्क थी और अब खुदा रुकावट है।
आगे वो कहते हैं, सुनोगे मेरे को
उबूर करके ही उसको बता सकूंगा जफर, उबूर करके ही उसको बता सकूंगा जफर, अभी ये कह नहीं सकता कि क्या रुकावट है।
रुकावट का जवाब सुन लो सर, चाहे दीवार कोई जितनी भी ऊंची कर ले, चाहे दीवार कोई जितनी भी ऊंची कर ले, धूप फिर धूप है आंगन में उतर आएगी।
यहाँ पे बोल के लब आजाद है तेरे।
बयान जी साहब, इस दुनिया में अपनी कुर्सी कोई नहीं छोड़ता। एक्चुअली मैं ये चेयर सिर्फ आपके लिए छोड़ के गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी सीट नहीं लाए। इंक्लूड करते हैं जो आपने शेर व शायरी की ना, मैं पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल और मेरा मुहाफिज जब मेरे मुल्क के लिए पैसा मांगने के लिए निकला और हमारे अपने मुल्क के लोगों ने टैक्स जब पे ना किया, चाहे वो जागीरदार हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी है, तो वो है ना कि दीवार गया किरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रस्ते बना लिए। जिसका दिल करता है वो एक मिसाइल भी चला देता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलती नहीं है, यूनाइटेड नेशंस बोलता ही नहीं है कि भाई कैसे आपने मिसाइल चला दिया और जो मियां जनू जाके लग गया, अगर उसके ऊपर मतलब अगर वो नुकसान पहुंचाता तो क्या होना
था।
एक्टिंग सर्विस आपकी
किस मिसाइल की, किसने किसके मिसाइल
ब्राह्मोस आके गिरा था इंडिया से,
ब्राह्मोस जो गिरा, ठीक है। आपका हाजिर सर्विस मुलाजम आपके मुल्क के बीच में पहुंच जाता है और इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपील होती है, साइन कहाँ से किए थे, किसने करवाए थे साइन। मैं इसको कंक्लूड क्योंकि टाइम हमारा अलाउ नहीं करता, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। प्याज भाई, मेरा कहने का मकसद जो है और मेरा जो दिल का दर्द वो ये है कि आंसरेबल करें लोगों को। आप मुझे बताइएगा, आज अभी आपने अपने आप सारे ये फरमा रहे थे कि एक आम आदमी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, इलेक्शन कमीशन हर बात का इतना तजिया करके इतने स्ट्रिक्ट कवानीन दे रहा है, एक आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए कितने फंड्स अलाउड हैं लीगली, कितना पैसा चाहिए। मेरा ख्याल है 10 लाख से ज्यादा नहीं, चंद लाख है, ठीक। क्यों 1 करोड़ 40 करोड़ की जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए? आप कनाडा में होते हैं, आप सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका के कानून को जानते हैं, क्यों नहीं आप लिखते कि यहाँ पे इन मुल्कों में अगर एक आदमी अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा खर्च करता है इलेक्शन में तो उसको उसका ऑडिट हो जाता है और वो डिसक्वालीफाई हो जाता है,
क्यों सीट छोड़नी पड़ती
है, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इन मुल्कों में अगर आप हैं, अगर आपके पास पोजीशन है तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि यू कैन नॉट अपॉइंट वन ऑफ योर रिलेटिव एट द सेम। जब हमने दुपट्टा उतारना है और जब हमने कपड़े उतारने हैं और जब हमने की स्वाप करना है और जब हमने फैशन करना है, उस वक्त तो हम वेस्ट को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो जहां हमने अच्छाई को इंट्रोड्यूस करना है वहां हम वेस्ट को क्यों नहीं अपना रोल मॉडल बनाते। आपने कहा कि एक आम आदमी जिसके पास कम पैसा है वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं। आप बताएं मुझे इलेक्शन कमीशन कितना चार्ज करता है या कितना अलाउ करता है टू स्पेंड इन द, हाउ कम कि वो अमाउंट 40 करोड़ चली जाती है? क्या ये ऑडिट नहीं करवाता होता इनका इलेक्शन कमीशन? बाकी चीजों में तो रोल प्ले कर रहा है, व्हाई दे डोंट प्ले रोल ओवर हियर?
पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असेंबली के लिए 7 से 10 लाख रुपए की लिमिट है और सूबाई असेंबली के लिए 5 से 7 लाख रुपए की लिमिट है, जो इंतहाई नाजायज है। पहले तो वो लिमिट ही गलत है, फिर इसकी बात यह है कि वहाँ फंड रेजिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और फिर वहाँ बुनियादी तौर पर तो हमें ओवरऑल एक सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम जो है नए सिरे से बनाने की जरूरत है। वहाँ तो कोई कल ही हमारी सीधी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर से लड़ाइयाँ झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे।
Exactly.
हमारे लोगों को कुर्सी इतनी अजीज है, इतनी अजीज है कुर्सी
नहीं है। हम सीरियस नहीं है, अगर किसी बिजनेस की बात होती है हम उसको जोक बना लेते हैं, अगर इलेक्शन की बात है तो वो
तो हमने बिजनेस बनाया हुआ है।
नहीं, उसकी वजह एक मैं बताती हूँ कि जैसी ये कुरान को आप डिनाय कर ही नहीं सकते, जैसी कौमें वैसे लीडर। अगर आपको एक गिवन अमाउंट है और अगर आपका अदलिया का निजाम बेहतर है, अगर आपका इलेक्शन कमीशन बेहतर है, तो आपके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि अगर आप इससे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, रादर देन प्लेइंग एज अ पार्ट ऑफ एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पाकिस्तान, राणा साहब ने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी, मैं उसी पे कंक्लूड करना चाहती हूँ विद थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू एवरीबडी। और मेरा दिल चाहता है
इस चैनल को आप अपना चैनल समझते हुए यू शुड कम मोर ऑफन.
जी जी.
इट इज एन एजुकेशन फॉर द पीपल. इट इज एन एजुकेशन फॉर द पीपल सर. इट इज एन एजुकेशन. आप लोगों को समझाएं कि कितना, और जब आपके लीडर्स को पता चले, आपका वडेरा, आपका जागीरदार अपने हारियों को, अपने इलाके के लोगों को तालीम हासिल नहीं करना देता ताकि उनमें शऊर पैदा ना हो.
मैं एक बात करना चाहती हूँ आरफा भाजी, जस्ट टू एंड दिस होल डिस्कशन, और वो बड़ी प्यारी बात जो कि एस जय शंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने की थी. उन्होंने कहा कि जो हमें पाकिस्तान के लिए अप्लाई करनी चाहिए इस वक्त, उन्होंने उनसे एक एंकर ने बड़ा सख्त क्वेश्चन किया कि हु साइड विल यू टेक, चाइना और यूएस. उन्होंने कहा यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, राइट? Their problems are theirs and our problems are ours. And if we have our problems, we should have the choice to resolve them.
We got to resolve our problems.
We should have the choice to do whatever we want.
Yes.
Right? तो पाकिस्तान को भी इस वक्त ये सोचना है कि जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसके पास चॉइस होनी चाहिए. लताफत साहब ने जो बात की, हमको अमेरिका से दोस्ती बनाए रखना चाहिए, लेकिन अगर इस मौके पे अमेरिका के साथ दोस्ती पाकिस्तान को नहीं सूट कर रही और चाइना के साथ कर रही है, इट शुड मेक दैट चॉइस.
नो, हमने तो कहा बिस्मिल्लाह, आपकी लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में
वो दोनों
इतनी इतने क्वालिफिकेशन,
इतना
और इसमें इंटेलिजेंट होना चाहिए,
इतना
करेज होना चाहिए. नहीं, आपकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि दोनों मुल्कों में बैलेंस स्ट्राइक करें.
इश्यूज जो आखिरी बात मैं कर दूं, जो इश्यूज जो है ज्यादातर जो है वो एशिया में है, और एशिया में पिछले, यानी अगर हम हिस्ट्री लें अफगानिस्तान से, रशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सारे मामलात में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आपको एशिया में मिलेंगी, और बदकिस्मती से ज्यादा पिछले चंद वर्षों में पाकिस्तान में है. और उनको रिजॉल्व करने के लिए सबको एक साथ चलना होगा. अगर हम सिर्फ ये मुनाफकत की सियासत करते रहेंगे तो एक जगह ही खड़े रहेंगे.
तो आप ये कहना चाहते हैं पूरे रीजन के साथ चलना होगा?
नहीं, पूरे रीजन में जो
डिप्लोमेसी
ज्यादा प्रॉब्लम आप देखें ना, एशिया में है, और एशियाई ममालिक जितने भी हैं वो वहां के सियासतदान जो हैं उनके अपने जाति मफादात है, मुल्क की तरफ कोई नहीं देखता. तो हमें
बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी.
मुल्क की मफादात के तहत काम किया गया.
हम उसको बताइएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर एजुकेट करें. आप लोगों के पास कलम है, और अल्लाह ने पहली कसम ही कलम की खाई थी आपके पास.
आजकल लैपटॉप पे वो कीबोर्ड है,
व्हाटएवर,
लेकिन कलम खत्म नहीं हो गया.
मगर मैं ये कहती हूँ लोगों को एजुकेट करें झूठ को. आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में मेरे पास मेहमान एक आया था जनाब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, एटलीस्ट वो मेरे जैसे बंदे के सामने आ गए, बैरिस्टर खालिद जफर जफरुल्ला. और उन्होंने, मुझे दुख हुआ, कोर्ट के साथ उनका ताल्लुक है, वो कहते जी हम नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए, अगर वो वापस आए तो उनके साथ वही सलूक होगा जो भुट्टो साहब के साथ हुआ. वो सही कहते हैं, मगर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसने एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था कि ये इलाज करवाने जा रहा है. इसका मतलब है कि आपने तो अपनी कौम को रोल मॉडल ही वो दिए हैं जो झूठ बोल के, और आप अपने बच्चे को सिखा क्या रहे हैं, चोरी को बोलो यू विल बी सक्सेसफुल.
सिंपल बात बाजी, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन्हें आंसरेबल ठहराएं. हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको आंसरेबल ठहराएं. अभी आपने बैरिस्टर जफरुल्ला साहब की बात की, तो बैरिस्टर जफरुल्ला साहब वो साहब हैं जिन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने फेडरल सेक्रेटरी लगाया था लाहौर का,
राइट हैंड ऑल द टाइम.
ठीक है, अब उन्होंने तो हमेशा मियां साहब को ही डिफेंड करना है. हमारे मसला यह है कि हमारी जितनी इंटेलिजेंसिया है, हमारा जितने मीडिया में लोग हैं, हमारे जितने दानश्वर हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ही खत्म नहीं होते. हमने अलम थामे हुए हैं, किसी ने इमरान खान का अलम थामा हुआ है, किसी ने नवाज शरीफ का अलम थामा हुआ है, किसी ने जरदारी साहब का अलम थामा हुआ है. हम वो अलम जब तक नहीं रखेंगे, जब तक हम सारे वो अलम रख के पाकिस्तान का अलम नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल रहेंगे. और हमें अपने लोगों को ही आंसरेबल करना है. चाइना, रशिया, अमरीका, इस दुनिया की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन पहले हम अपने गिरेबान में तो झांक लें.
میاں کہتی ہوں مجھ سے میری کوئی پارٹی نہیں, میں تو صرف یہ کہتی ہوں وی گاٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل. واٹ از دی اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو گو ان ٹو دا الیکشن؟
نمبر ٹو ایجوکیٹ, یہ نہیں تو دوسرا بندہ کہے گا لفافہ ہے, یہ کرے یہ کہے گا لفافہ.
آپ نیوٹرل کسی کا ساتھ ہی
نہیں, ساتھ نہیں. جب آپ حق کی بات کریں گے
تو ایک کا ساتھ دیں گے نا, تو وہ ایک کے ساتھ دیں گے, آپ پر چھاپ لگ جائے گی.
جس دن ہم پی ٹی آئی کا بندہ لیتے ہیں نا, پریکٹیکلی لسنر گالیاں دیتے ہیں کو لے کے آگے, آپ پی ٹی آئی والے ہیں. ایک دن ایک آدمی کہتا ہے آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں. او خدا کا واسطہ ہے لوگو, پاکستان از فرسٹ. پاکستان پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں.
آسان حال میں بتاتا ہوں, سوری فار انٹرپشن. آسان پہلے آپ کس پارٹی کے ساتھ تھے؟
بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ. میں ایک دفعہ ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ, یو مسٹ ٹیک تھنگز سیریس. آپ بہت قابل احترام ہیں, آپ کی طاقت بہت اسٹرانگ ہے. آپ اقبال, انور اقبال صاحب ڈان کے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ شامل تھے. آپ بہت مضبوط اشخاص ہیں, پاکستان کے رائٹرز بہت مضبوط ہیں. میری ریکویسٹ ہے ایجوکیٹ پیپل, واٹ از دی کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ہاؤ مچ از نیڈیڈ ٹو گو فار دا الیکشن. اگر آپ کا جھوٹ, آج آئی ایس پی آر نے جواب دیا ہے, وہ جو ہیلی کاپٹر کی ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے, جب آپ سارے